ओम शांति। कहते हैं इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। ये क्लास जब मिला था तो हम कराना नहीं चाहते थे, पर इस मुरली से कुछ जुड़ी एक बात बताना चाहते अपने अनुभव की। हम पूना में जब थे तो उस समय हमारे पास फोन में मुरली नहीं थी, और जिस जगह रहते थे वहां भी मुरली नहीं थी, क्योंकि सेंटर पे सारी सेवा होती थी। फिर एक स्थान था जहां पे कुमार लोग रहते थे, पर मुरली का बहुत स्टॉक नहीं था। तो एक भाई मधुबन से आया था, उसके पास फोन में मुरली थी। हमने कहा कुछ मुरली दो, हमें पढ़ना है। तो उसने फोल्डर निकाला और कहा इसमें से जो मुरली चाहिए ले लो। तो हमने जो फोल्डर ओपन किया उसमें 86 पे क्लिक किया, और जो उसने मुरली पे भी गए तो 18 जनवरी की मुरली पे। तो ये मुरली हमें इतनी अद्भुत लगी, इतनी क्लियर लगी। फिर हमने पूरी रात करीब लगभग 12 बजे तक वो पूरी मुरली पढ़ी, जबकि मुरली 10 पेज की बहुत लंबी मुरली है। उसके बाद इस मुरली पर हमने करीब 6-7-8 महीने तक, यानी मई की ये बात है तो लगभग फरवरी तक इस पर बहुत काम किया, बहुत लोगों से डिस्कशन किया, बहुत अभ्यास बनाए, बहुत चिंतन किया। और जितना भी करते थे कभी ऐसा नहीं लगता था अभी तो हो गया या सुन लिया, ये तो बात पता है। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ समय बाद हमारे पास तब मुरलियां थी, तो एक बुक निकाली ऐसे मनुआ पढ़ने का कि कुछ और करते हैं, तो भी यही मुरली खुली। मतलब वो 18 जनवरी पे ही गई, हालांकि उस समय में डेट नहीं याद थी कि 18 जनवरी 86 की मुरली है। और उस समय भी फिर हमने थोड़े दिन काम किया। और एक यहाँ पे जनवरी मास में एक सीजन एक चल रहा था जिसमें हर 18 जनवरी की मुरली सब कोई रिवाइज कर रहा था। तो एक दिन सुशील भाई हमको बाहर मिले और बोले कि कल परसों एक बहन ने जो है रिवीजन कराना था, वो बहन चली गई है तो आप करा देना। तो हमने कहा ठीक है, क्या डेट है? उन्होंने बोला 18 जनवरी 86। तो अब हमें उस समय भी नहीं आता ये वही वाली मुरली है। फिर जब पढ़ा तो हमने कहा ये तो वही मुरली है जो तीन बार हमें, मतलब दो बार ऐसे मिल चुकी है। और उस दिन हमारा ये 10 दिन का कुछ विशेष प्रोग्राम है, मतलब अपना पर्सनल योग का। तो शाम को हमें संकल्प आ रहा था कि फिर से वो मुरली खोलते हैं और उस पर कुछ काम शुरू करते हैं। तो जब यहाँ पे आके बैठे तो वो भाई साहब ने बोला कि संडे को कराना है, बल्कि अरविंद भाई ने बोला मंडे के लिए, बोला नहीं संडे को कराना है। तो उन्होंने बोला, हमने कहा कि हम आएंगे ही नहीं, भले मन में बोला कि कोई भी। फिर उन्होंने बोला खुद ही 18 जनवरी 86। हमें लगा शायद इनको पता होगा, क्योंकि एक बार बहुत पहले हमने इनको बताया था, तो कह रहे नहीं हमको ऐसा कुछ पता नहीं था, हमने तो ऐसे ही आपको दे दी। तो ये मुरली घूम फिर के चार बार हमारे पास आई है, और ये कहेंगे फोर्थ टाइम ऐसा है। और जिसके थ्रू भी मिला, किसी को भी ये नहीं पता था कि मुरली पे हम इतना काम कर रहे हैं, इसको इतना अभ्यास किया है। तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, जो चीज हम सोचते नहीं वो बार बार अपने आप होती। क्योंकि अब ये बात आती है, इस मुरली में 10 पेज की लगभग ये मुरली है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने कई ज्ञान की भी राज बताए हैं, कई एडवांस पार्टी में कई लोगों का जिक्र आया है, मम्मा का है, दीदी मनमोहिनी का है, विश्व किशोर बाहू का है, और कुछ अंतिम समय की हमारी स्थिति कैसी हो, अंतिम समय वो दृश्य कैसा होगा, उसके लिए क्या चाहिए और क्या करना होगा। तो माने बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली का भी है, क्योंकि यज्ञ का उस समय गोल्डन जुबली था और कुछ बहनों का सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था। तो ऐसे टाइम पे मतलब कि ये चल रही है मुरली। दादियों से भी बात हुई है, फिर टीचर्स बहनों से भी बात हुई है। तो सारा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य जो शुरुआत के कुछ है एडवांस पार्टी का, और कुछ दीदी से भी बहुत लंबी बात हुई है, तो वो सब लेंगे। और अभी आप सबको एक काम करना रहेगा कि हर जब हम मुरली सुनते हैं तो अक्सर कर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि जब ऐसी मुरली चलती है, एक बार चंद्रमणि दादी की ब्राह्मणी विजया बहन जो कि ORC में है, तो वो मुरली पढ़ती थी, तो वो देखती थी चंद्रमणि दादी, बोलती थी तुम ऐसी मुरली पढ़ती जाती हो? तो बोले हाँ। तो फिर जब उनको पूछा क्या क्या पढ़ा, तो अभी क्या पढ़ा वो तो याद नहीं, क्योंकि पढ़ तो दो दो मुरली ली। तो चंद्रमणि दादी ने एक बात उनको सिखाई, कहा जब मुरली पढ़ते हो तो जो पढ़ रहे हो वो जितना विजुअलाइजेशन करोगे, जितना देखोगे वो बुद्धि में याद रह जाएगा। तो आज भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इस मुरली में बाबा की भी बात है, तो एडवांस पार्टी की भी बहुत सारी बात है, बहुत रूहरहान हुई है। तो ऐसे अनुभव करना है जैसे मुरली सुनते जाएंगे, तो साथ साथ वो विजुअलाइजेशन भी करते जाएंगे, ताकि हमारी मेमोरी जो है देखने से क्लियर हो। और वैसे भी बाहर वाले भी कहते हैं, जितना हम जो चीज देखते हैं विजुअलाइजेशन करके, मनसा शक्ति, इसमें मनसा का भी हेडिंग ही है, निर्भयता की शक्ति तथा मनसा की शक्ति, तो मनसा शक्ति भी पावरफुल होगी। तो मुरली शुरू करते, मुरली 18 जनवरी 86, निर्भयता की शक्ति तथा मनसा शक्ति। तो ओम शांति भवन में मुरली चली है, जिसमें बाबा कह रहे हैं वृक्षपति बाप अपने फाउंडेशन को देख रहे हैं और आदि देव जो हैं अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि कैसे सब विशेषताएं हैं, क्या उनमें गुण हैं, वो क्वालिटीज देख रहे हैं। और साथ साथ बाबा ने ये भी बोला है कि ऐसे बच्चों के भगवान क्या कर रहे हैं, स्नेह के गीत गा रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने दुनिया का दिमाग ना होते हुए भी क्या किया, दुनिया बनाने वाले को देख लिया, दुनिया बनाने वाले को पहचान लिया। दुनिया का दिमाग भले ना हो, लेकिन बाप इतना दिमाग दे देते हैं जो रचना को, रचता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल जाती है। दूसरी बात इसमें बाबा ने बोली कि बाप को दुनिया के दिमाग ही पसंद नहीं आए, बाप को सच्ची दिल वाले पसंद आए, सच्ची दिल साफ दिल, ऐसे बच्चे बाप को पसंद आए। और सच्ची दिल साफ दिल पे तो कई बार बाबा ने बोला है कि साहब जो है सहज राजी हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारी महिमा कौन कर रहा है यहां पे। आप सोचो, अगर आप अपने सारे द्वापर युग के जन्म देख लो, तो हम सब मंदिरों में जाते थे, पूजा करते थे या जो भी करते थे, और हम उसे देखते थे, खुश होते थे और समझते थे दर्शन हो गया, माना बहुत बड़े भाग्य मिल गया, और उसकी महिमा के गीत गाते थे। लेकिन सोचो द्वापर युग का फल कैसे रिटर्न हो रहा है कि जिसकी हम महिमा करते थे, जिसके हम दर्शन करके खुद को भाग्यशाली समझते थे, आज वो खुद जो है हमारे दर्शन कर रहा है और हमारी महिमा के गीत गा रहा है। तो हमारी महिमा के गीत कौन गा रहा है, स्वयं भगवान गा रहा है, और वो इस मुरलियों में है। तो सोचो कितना नशे वाली ये बात है। दुनिया में भी देखो, किसी को कोई टाइटल अगर मिलता है, कभी हम देखते हैं कि किसी को कोई अवार्ड मिला किसी जगह, तो उसको कितना फ्रेम लगा के रखेंगे और उसको सामने दिखा के रखेंगे कि सबको पता चल जाना चाहिए हमको यहां से अवार्ड मिला है, हमारे लिए इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कही है। तो सोचो भगवान हमारे लिए कितनी बड़ी बात कह रहा है। कितना नशा होना चाहिए इसके लिए कि जो संपूर्ण है, तृप्त है, वो हमें देख के खुश हो रहा और हमारी महिमा के गीत गा रहा है। तो बाबा ने इसमें विशेष सच्ची दिल को महत्व दिया कि सच्ची दिल वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बाप को बच्चे पसंद आए। और दिमाग तो भगवान इनको इतना दे देता है कि सारी सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो आप अब यहां पे सोचना कि हमारी दिल कैसी है, हमारी दिल में कितनी सच्चाई है, कितनी क्लियरिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान हमारी महिमा के गीत गा रहा है, हम कहीं ना कहीं गुप्त रीति किसी इंसान की महिमा के तो गीत नहीं गा रहे हैं। तो ये भी कैसा लगेगा कि जो हमारी महिमा के गीत गा रहा है, हम किसी और को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बाबा भी कल की मुरली में भी था ना कि एक सेकेंड भी बाप जो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, और हम उसके साथ कितना सेकंड या कितने घंटे कितने मिनट रहते हैं। इसके बाद बाबा ने आगे बोला कि आज वतन में विशेष एडवांस पार्टी भी इमर्ज थी। अब बाबा यहां पे जैसे एक संदेशी किसी को संदेश सुनाती है, उस रीति से भी बाबा हमको मैसेज दे रहे हैं। जैसे समझिए ऊपर एडवांस पार्टी वाले हैं, नीचे बाबा आए हुए हैं और सामने हम बैठे हैं। तो जैसे बाबा का पार्ट ऐसा है कि मैसेज पास कर रहे हैं बाबा एडवांस पार्टी वालों का। तो बाबा ने बोला कि आज विशेष वतन में एडवांस पार्टी भी इमर्ज थी और उन्हों की भी माला बन रही थी, दो माला। तो उसमें बाबा ने बोला कि उन्हों के आपस में रूह रेहान चल रही थी। तो बाबा ने बोला किस चीज की रूह रेहान चल रही थी। अब आप सोचो वतन में किस चीज की रूह रेहान चल रही होगी उस समय। ये हाँ कारोबार की और कोई बात, नई दुनिया की प्लानिंग कैसे होगी। उसमें बाबा ने बोला दो बात की विशेष रूढ़िहान चल रही थी, समय और संपूर्णता, कि कितना टाइम रहेगा। स्कूल में भी जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या देखते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन इतने बाकी हैं और टाइम इतना पड़ा है, तो उस आधार से हम अपनी स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि टाइम अभी बहुत पड़ा है, काम थोड़ा सा है, तो थोड़ा आलस भी आ जाता है। इसलिए पुरुषार्थ भी करना है और पुरुषार्थ के साथ साथ बीच बीच में समय को भी देखना है कि संगम युग का समय कितना रहा हुआ है। हालांकि क्लियर तो कोई नहीं कह सकता कितना रहा है, लेकिन आपका अपना शरीर की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि कब चला जाए। बेड पे सो रहे हैं आज, पता नहीं अगले दिन को मोचरी में सोना पड़े, तो कुछ कह नहीं सकते ना। फिर भी प्लान तो बुद्धि में बना के चलते रहते हैं, लेकिन अपने शरीर का तो कुछ भी ठिकाना नहीं किस समय कौन चला जाए। बर्थडे तो सबको याद रहता है, लेकिन डेथ डे तो किसी को याद नहीं रहती। तो आप सोचो फिर उस हिसाब से हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर कोई चीज का पता पड़ जाता है ये चीज जो है इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी, तो हम उसको फटाफट यूज कर लेते हैं कि एक्सपायर होने से पहले कर लें। तो आप सोचिए कि हमारी बुद्धि में इतना क्लियर ये चीज बैठी है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हम इस यज्ञ में उस संसार के जीवन को छोड़कर इस दुनिया में आए हैं जिस काम को करने के लिए। तो बाबा ने बोला दो चीज की उनकी विशेष रूढ़िहान चल रही थी, और उसमें एक स्पष्ट किया जो बहुत गहरी बात बोली कि एक तो वो ये भी विचार कर रहे थे कि नई दुनिया की स्थापना के लिए कहां कहां किस किस का पार्ट होगा, जो नई दुनिया आरंभ होगी, कहां कहां माना स्थान, किस किस का मतलब कौन सी वो आत्माएं होंगी जिसका वो ये काम करेंगे। फिर आगे यहां पे बाबा ने बोला इसमें कि जो वो आपके जो एडवांस पार्टी वाले उन्हों को भी सहयोग चाहिए। किस चीज का सहयोग चाहिए होगा, किसका? सकाश का, उन्हें अपने लिए, उनको अपने कार्य के लिए सहयोग चाहिए सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का। इसमें तीन बातें ऐड हैं, एक है सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, मनसा है। क्योंकि एक जो कार्य होने जा रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे है और बहुत ही कहेंगे कि बड़ा कार्य है जो हर किसी के बस का नहीं है। अगर एक रीति से देखा जाए तो द्वापर युग जो कि रजो प्रधान युग है, उस युग में भी इतने धर्म स्थापक आए, इतनी पावरफुल सोल्स आई, उस काम को करने के लिए कितना कुछ किया गया, फिर भी क्या हो गया, ये दुनिया पतित हो गई ना। और जबकि वो रजो प्रधान युग है, तो आप सोचो इस तमो प्रधान दुनिया में वो आत्माएं इतना बड़ा कार्य करने जा रही हैं, तो आप सोचो उनको भी अगर मदद करनी होगी तो कितने बड़े लेवल की मदद चाहिए होगी। आगे बाबा ने बोला है कि इस अति तमोगुणी तमो प्रधान दुनिया में, इस दुनिया में ऐसी अल्पकाल ये अल्प सतोगुणी आत्मा है जो कमल पुष्प समान है, तो इनको सहयोग किस चीज का चाहिए, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का। अब आपको ये भी सोचना हमारी मनसा किस लेवल पे है। अब ये भी एक अपने लिए पुरुषार्थ का विषय है कि हमारी मनसा किस कैटेगरी में आती है, किस तरीके की सोचते हैं। एक वो बात अलग है कि जैसे हम बैठे हुए हैं और हमको ये काम मिला है, या फिर हम योग में बैठे हैं, क्योंकि योग में जो बैठे हैं तो अलग चीज है, पर सामान्य रूप से परिस्थिति में, किसी सरकमस्टांस में, या किसी व्यक्ति के साथ स्वभाव संस्कार में, उस समय हमारी मनसा कैसी रहती है। कोई सीन दिखता है, कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है, उस समय हमारी मनसा कैसी रहती है। एक है मनसा को जबरदस्ती अपने संकल्प को क्रिएट करना, भले वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन जब नेचुरल आपके संकल्प कैसे उठते हैं, जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़े, स्वतः जो संकल्प उठे, तो अब उसमें तीन कंडीशन है, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा, ऐसी शक्तिशाली मनसा की सहयोग की उनको आवश्यकता है इस कार्य के लिए। फिर आगे इसमें बाबा ने कहा कि वो पूछ रहे थे कि हमारे साथी इतने बड़े कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो आया समझाया खाया और खेला, माना इसमें ही तो समय नहीं जा रहा है। ये भी एक प्रश्न है कि अब हमारा समय किस चीज में जा रहा है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम क्या इतनी बड़ी सेवा के लिए तैयार हैं। पहले तो देखा जाए, अगर किसी के पास जब कोई लक्ष्य होता है ना, तो लक्ष्य के अनुसार वो खुद ब खुद वैसे काम करने लगता है। अगर हमारा लक्ष्य ही ये है कि हमको हमारा रूम चेंज हो जाए, हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, एक बार मधुबन चले जाए, या इसकी बुद्धि का ताला खुल जाए, उसकी बुद्धि का ताला खुल जाए, अगर ये छोटे छोटे लक्ष्य रखेंगे तो ये इतने बड़े कार्य के लिए तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए, और इसमें भी हमारा फिर समय कहीं ना कहीं ऐसे कामों में वेस्ट चला जाएगा। तो अभी एक बात यह आती कि अपना समय चेक करना, अपनी मनसा चेक करना है कि हमारी मनसा किस लिए कैसी उठती है, किस तरीके की उठती है। तो बाबा ने आगे ये बोला है कि ये कार्य बहुत बड़ा है। उसमें दो तीन बातें बोली हैं कि लास्ट समय की जो बात बोली है कि ऐसी आत्माएं जो तमो प्रधान है, अति तमो गुणी है, इन भले चाहे, इसमें बोला कि भले चाहे वो किसी भी विधि से शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे समय पे जो वायुमंडल होगा उस वायुमंडल को चेंज करना और उस खूने नाहक वायुमंडल से अपने आप को सेफ करना, तीसरी चीज, और उनको सहयोग देना। तीन बातें, एक तो उनके वायुमंडल को चेंज करना, अपने आप को सेफ रखना, तीसरी बात फिर उस वायु और उस उनको भी सहयोग देना, ये तीन चीजें करनी होंगी लास्ट में। फिर आगे इसी में बाबा ने बोला कि सोचो इतने बड़े कार्य के लिए आप तैयार हो, तैयारी कर रहे हो। आगे फिर बोला इस कार्य के लिए विशेष जो है मनसा शक्ति चाहिए, और मनसा शक्ति का अर्थ बताया बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प, अर्थ मनसा माना श्रेष्ठ संकल्प। ये संकल्प शक्ति से आपकी अंत जो है वो सुहावनी बनेगी। दूसरा, आप ऐसे समय पे सेफ रह सकोगे, सेफ्टी अनुभव करोगे। और दूसरा फिर इसको लाइन में आगे बाबा ने बोला कि निर्भयता की शक्ति और मनसा शक्ति कहां तक जमा करी है। वैसे निर्भयता शक्ति का बस यहीं पे एक जगह वर्णन आया, बाकी मुरली में निर्भयता शक्ति को कहीं भी आगे बाबा ने नहीं यूज किया है। तो ये बात आ रही, ऐसा सीन होगा, समय होगा और आपको ये करना होगा। अब आप सोचो अगर हमारे घर में छोटा सा प्रोग्राम होता है तो हम उसकी कितनी तैयारी करते हैं। चाहे मधुबन में भी देखो कोई प्रोग्राम होता है तो कितनी तैयारी होती है। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी सूचना आ जाती है कि आज भूकंप आएगा यहां या कुछ होगा तो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बुद्धि में चलने लगता है। तो आप सोचो ये कितनी बड़ी हाइएस्ट गवर्नमेंट है जिसने पहले ही से ये अनाउंसमेंट कर दी है ये होगा। एक बार तो गवर्नमेंट का बोला हो, चलो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति है, कोई जरूरी नहीं हो या ना हो, क्योंकि प्रकृति का कुछ नहीं कह सकते। पर इस गवर्नमेंट ने पहले से ये बोल दिया ये चीजें होंगी। अब आपको सोचना है कि हमारी भी बुद्धि इतनी जागृत रहती है ऐसे कामों के लिए। उसमें भी आगे बोला बाबा ने कि ऐसा तो नहीं अपने सेंटर पे, अपने जोन में ही बिजी हो। अभी हमारा लक्ष्य क्या है, क्या ऐसे कार्य के लिए हम तैयार हैं करने के लिए, कि जो बाबा ने ये बात एडवांस पार्टी वाले पूछ रहे हैं कि हमें इस कार्य के लिए सहयोग चाहिए, ऐसा सीन होगा और आपको ये करना होगा। अब ये बात आती है कि मनसा शक्ति की, तो बात बहुत मुरलियों में भी आती है और साथ साथ देखा जाए तो मनसा का यहाँ पे काफी सीरीज भी चला है, लेकिन निर्भयता की शक्ति क्या है। क्योंकि आप अगर देखो सामान्य रीति भय कहाँ होता है, बाहर होता है या अंदर होता है, अंदर होता है। अगर किसी कोई रोज सपोज करो किसी घर में रहता है और रोज वो नहीं डरेगा, लेकिन किसी एक दिन आपने बता दिया कि यहां पे एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा था, सुसाइड किया था या ये किया था, वो देखना उस दिन रात में जरूर वो डरेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो नॉर्मल रीति तो ठीक था लेकिन जब बुद्धि में ये विचार आ गया कि ये ऐसा हुआ था तो वो कहीं ना कहीं डर का अनुभव जरूर करेगा। वैसे तो डर बहुत तरीके के होते हैं, इतने तरीके के होते हैं कई बार हमको भी नहीं पता होता है, और जब वो प्रैक्टिकल में कुछ होता है तो हमें भी अंदर अंदर से फील होने लगता है कि यहां पे हम डर रहे हैं। और ऐसे काम के लिए डरने वाली आत्मा का तो कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कराची में भी एक बार एक बहन का ऑपरेशन होना था, पैर का कुछ करना था, बाबा ने बोला जिसकी हिम्मत हो जाके देखे। तो गुलजार दादी कहती है कि थोड़ी बहनें गईं, उसमें से कई सारी बेहोश होके वहीं गिर गईं। अब आप सोचो एक, हाँ तो बीच में, तो ये चीजें बीच बीच में इसीलिए हो रही है क्योंकि शायद हम एकदम से अगर हमको कुछ ऐसा कह दिया जाए कि कोई मौत देखना, किसी का खून देखना, तो शायद चक्कर आने शुरू हो। हम देखते हॉस्पिटल में भी, हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में इतना ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन बाहर के हॉस्पिटल में आप देखो कितने लोग ऐसे पड़े रहते हैं। कई जो लेके आते हैं पेशेंट को छोड़, जो लेके आते हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट करना शुरू करना पड़ता है, वही चक्कर आने लगता है। अब आप सोचो हमारी मनसा शक्ति कितनी। यहां पे बाबा ने निर्भयता की शक्ति को बोला है कि निर्भय मतलब जो आत्मा निर्भय है वही ये काम कर सकती है, और जो भयभीत होती है वो क्या करती है, उल्टा उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता, वो दूसरे के लिए क्या करेगी। तो वो सीन होगा, मतलब बहुत कुछ होगा वहां पर। आपका लास्ट समय का भी पेपर होगा, बाबा ने भी बोला अगर मनसा शक्ति नहीं होगी तो अपने ही किए हुए पाप कर्म पश्चाताप की तरह खाएंगे, जैसे कोई भूत अनुभव होता है। तो ऐसे समय के लिए आपको जमा करना है, एक है मनसा शक्ति, दूसरा जमा करना। ये भी एक बात है कि जैसे गुलजार दादी ये बोलती कि हम कोई भी कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं पीछे के या इस जन्म के, तो वो पाप कर्म बाप की याद से क्या होते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो गुलजार दादी ने एक बात ये भी बोली, तो सोचो जो आप पुण्य कर्म करते हो, तो जो पुण्य कर्म करते हो अगर कोई बड़ा पाप कर्म हो जाता है तो वो पुण्य कर्म भी आपका फिर समाप्त हो जाता है। कई बार साकार मुरली में आता है ना कि अगर विकार में गए तो की कमाई चट हो जाती है। तो आप सोचो आपका एक और, आप मम्मा कहती थी आप लोग अमृत वेला बैठते हो, योग करते हो, इतनी मुश्किल से बुद्धि को टिका के थोड़ा बहुत योग करके जमा करते हो, और उस जमा की वे को सेकंड में वेस्ट कर देते हो। छोटे मोटे हिसाब किताब होते हैं उसमें किसी को कुछ बोला तो सारा क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो शक्ति को जमा करना ये भी एक विचार करने वाली बात है कि जो शक्ति हमारे अंदर है वो जमा हो रही है या नहीं हो रही। और उससे भी पहली बात ये है कि जो शक्ति हमारे पास है हम कैसे चेक करें कि शक्ति हमारे पास है, उसकी विधि क्या। अगर कोई समझता हमारे अंदर मनसा सेवा है, मनसा सेवा कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी मनसा सेवा सक्सेस है या हम जो मनसा सेवा कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि कई बार कई लोग कहते हैं कि हम मनसा सेवा करते हैं और फिर पूछते भी ऐसे प्रश्न है कि जैसे लगता है कि मनसा सेवा तो कर रहे पर उन्हें खुद ही को नहीं पता है कि हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस समय के लिए ये चीजें चाहिए। वैसे तो जो बोला कि निर्भयता की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है, और जो निर्भय रहता है ऐसी आत्मा जो है बड़ी परिस्थिति को भी छोटा कर सकता है, और जो भयभीत होने वाली आत्मा ये तो छोटे को भी बड़ा कर देगा, उल्टा चार पांच लोगों को भी अपने साथ ले डूबेगा। जैसे कोई डूबता है ना तो जो बचाने जाता है उसको भी वो ले डूबता है, क्योंकि भय है उसके अंदर। और जब भय आ जाता है तो वो आत्मा किसी के मदद को भी स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कमजोर हो चुकी होती उस समय। तो वो सीन को सामने रखना है, अपना लक्ष्य सामने रखना है, ताकि हम उस काम को कर सके। और एक चीज है कि जैसे बोला एडवांस पार्टी वाले पूछ रहे हैं क्या आप हमारे ऐसे कार्य में सहयोग के लिए तैयार हो, तैयारी कर रहे हो। अब देखो जब कोई व्यक्ति हमारा वेट कर रहा होता है तो उस समय क्या होता, हमारी स्पीड ऑलरेडी तेज हो जाती है। अगर कोई रूम में हो बोले कि जल्दी निकलो सब खड़े हैं तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी स्पीड। तो हर घड़ी ये चीज ध्यान में रखना है कि जो ये एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं केवल वो ही नहीं, सब वेट कर रहे हैं। आप सोचो भगवान हमारा वेट कर रहा है, ब्रह्मा बाप वेट कर रहा है, जगत अंबा माँ वेट कर रही, प्रकृति के पांचों तत्व इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो भक्त आत्माएं हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें हमारी भक्ति का फल कब मिलेगा। जो तमोगुणी आत्माएं जो पाप कर्म कर रही हैं वो भी अब थक चुकी हैं। तो माना प्रकृति के तत्व इंतजार कर रहे, आत्माएं इंतजार कर रही, क्योंकि इनको भी मुक्ति कब नहीं, तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम तैयार नहीं हो सकते। ये भी हमारे पीछे लाइन में ही खड़े हैं। आप देखा कभी लाइन लगता है कोई आगे खड़ा हो जाता, आगे नहीं बढ़ता तो सब धक्का देते हैं उसको। तो अपने भी पुरुषार्थ में ये याद रखना, पीछे से हमें धक्का आ रहा है इतनी सारी आत्माओं का। और सोचो नई दुनिया जब आएगी तब जाके इनको मुक्ति मिलेगी। तो हमेशा बुद्धि में ये रहे कि हमारा बहुत लोग इंतजार कर, और कभी ये नहीं सो, हमेशा ये सोचना पूरी ब्राह्मण तैयार है, सब प्रकृति तैयार है, बाप तैयार है, साइंस वाले तैयार है, बस देर है तो किसकी है, मेरी अपनी देर है। अगर सोचेंगे अभी तो बहुत लोग हैं, अभी नए आ रहे हैं, इनको ये करना है वो करना है, नहीं, केवल मेरी देर है, बाकी सब तैयार खड़े हैं, मेरे लिए सब रुके हुए हैं, ताकि हमारे पुरुषार्थ में वो स्पीड आ जाए। फिर आगे इसमें बाबा ने एडवांस पार्टी की और बातें बोली हैं कि अब बोलो आप ऐसी सेवा के लिए तैयार हो। वो आज पूछ रहे थे, बाप आज उनकी संदेशी बनके उनका संदेश सुना रहे हैं। तो आज के दिन विशेष एडवांस पार्टी वाले वतन में इमर्ज थे, आप सबकी विशेष मीठी जगत अम्बा माँ आप सबके लिए दो मधुर बोल बोल रही थी, ये सेवा में सहज सफलता का साधन है। दो शक्तियां बताई, एक है समाने की शक्ति और दूसरा सहन शक्ति। इस शक्ति के आधार से कोई भी कार्य है वो सदा अनुभव होगा, सहज अनुभव होगा। दो शक्तियां, समाने की और सहन करने की। तो आप सोच, वैसे हमने जितना भी सर्च किया, मम्मा के जो भी संदेश आए, जो भी आए, उसमें ज्यादातर शक्तियों का ही वर्णन में ये सहन शक्ति और समाने की शक्ति का वर्णन है, और कुछ कुछ जगहों पे बेहद का वैराग, ये ज्यादातर मम्मा के वाणी में, मतलब संदेश में आया। दूसरा, फिर बाबा ने पूछा और किसका बताएं, तो किसी ने बोला कि विश्व किशोर भाव का। तो फिर भाव के लिए बाबा ने बोला कि वो वैसे भी बहुत कम बोलता है, पर जो भी बोलता है शक्तिशाली बोलता है। तो बाबा ने बोला कि उसका भी दो ही शब्द में पूरा सार था कि अगर लक्ष्य को पाना, माना कि निश्चय अटल हो और नशा संपन्न हो, तो उसका ये दो शब्द में ही पूरा सार था। जैसे ब्रह्मा बाप का देखा कि ब्रह्मा बाप को नशा था कि अभी अभी जाके बाबा विष्णु बनेगा, अभी अभी जाके ये शरीर छोड़कर ये बनेगा, ऐसे ही इसको भी नशा था। तो नशा होने के कारण, निश्चय होने के कारण समानता हो गई, माना उसके उस लक्ष्य में समानता हो गई। कि क्या नशा था विश्व किशोर भाव को पता है, कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस बनूंगा। तो मतलब कि विश्व किशोर तो अभी है, भविष्य में उनका भी किशोर बनेगा। तो ऐसे तो ये एक रास की बात आई है कि मतलब कि इसमें बाबा ने बोला है कि तो क्या हो गया, समानता हो गई। तो थोड़ा सा लगता है कि विश्व किशोर के बारे में, और जानकी दादी ने भी एक बार बोला था, मुझे किसी का भी नहीं पता, लेकिन मम्मा बाबा को छोड़कर अगर किसी के लिए कहा जाए तो जानकी दादी ने बोला था कि विश्व किशोर के लिए मैं गारंटी करती हूं ये आठ की माला में जरूर है। तो विश्व किशोर भाव के बारे में बोला, फिर बाबा ने बोला आगे किसका बताएं। तो आगे फिर बाबा ने दीदी के बारे में बोला कि दीदी भी इस संगठन में इमर्ज थी, वो आदि रत्नों के संगठन में कैसे मिस हो सकती है। दीदी के लिए बाबा ने बोला कि दीदी ने बोला कि आपने बिना छुट्टी दिए बुला लिया, क्योंकि 83 और 86 ज्यादा समय नहीं था। तो दीदी ने बोला, दीदी के लिए बाबा ने एक बात बोली कि लौकिक संबंध नहीं थे पर अलौकिक संबंध थे, सेवा की जिम्मेदारियां थी, उसके बावजूद भी क्या हुआ, सबसे नष्टो मोहा हो ड्रामा में नूद हुआ और अपनी ड्यूटी पे पहुंच गई। चाहे भले विश्व किशोर का थोड़ा सा पता भी था, लेकिन इसको भी जब लास्ट समय आया तो सब कुछ भूल गया और नष्ट मोहा बनकर आ गया। पता है किसी को विश्व किशोर भाव का पहले से थोड़ा क्लियर था कि जाने वाले हैं? आपको तो पता ही होगा, आपको, हाँ, आप सबने हिस्ट्री हॉल में एक फोटो देखा होगा जहां पे वो भाऊ है, एक एम्बेसडर है, बाबा खड़े हैं और रमेश भाई खड़े हैं। तो जब उस वो बॉम्बे जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, बाबा ने छुट्टी दे दी थी, तो उस समय बाबा ने खुद, ब्रह्मा बाबा ने चंद्रहास दादा को बुलवा के बोला फोटो खींचो, चंद्रहास दादा ने फोटो खींची थी। तो रमेश भाई को बहुत आश्चर्य लगा कि बाबा कभी भी फोटो नहीं खिंचवाते थे। तो उन्होंने उनसे खुद पूछा, तो रमेश भाई को उन्होंने बोला कि बाबा जानता है कि बाबा से ये मेरी अंतिम मुलाकात है और मैं अब जा रहा हूं एडवांस, मतलब आगे की सेवा में। तो रमेश भाई ने बोला, अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी तो बहुत काम है, और आप यज्ञ के उस समय सीनियर भाई वहीं थे। तो बोले, नहीं अभी तो क्या बहुत लोग आ गए हैं, वो जगदीश भाई का भी नाम लिया और निर्वैर भाई का भी नाम लिया, तो बोले कि सब देखो आ गए हैं और आप भी हो, तो अभी मेरा यहां से काम पूरा, अभी मुझे आगे जाके और काम करना है। उसके बाद उनको शरीर तो वैसे हॉस्पिटल में ही छोड़ने का था, लेकिन बाबा से बताते हैं, खास बाबा ने उन्हें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया था जिसमें वो उनका ऑपरेशन के बाद उन्होंने सेंटर पे ही शरीर छोड़ा था। तो संतरी दादी सब लोग यहां से गए थे, बाबा ने फिर वो सुना भी होगा, बाबा ने रात भर जाग के सकाश भी उन्हें दी। और फिर अगले थोड़े दिन बाद जब संतरी दादी फोटो लेके आई तो बाबा ने फोटो फाड़ दी, देखा भी नहीं, बोला शरीर को क्या देखना। बाबा से पूछा गया डेड बॉडी यहां लाए, बाबा ने बोला नहीं जरूरत नहीं, वहीं पे ही सब कर दो। तो बॉम्बे में ही उनका कर दिया गया। तो आप सोचो उनकी स्थिति कितनी पावरफुल, कितना लक्ष्य था। लक्ष्य जब रहता है तो जरूर आत्मा उस काम को करने के लिए पुरुषार्थ करती है कि मुझे ये काम करना है। तभी तो वो आप देखो कितनी जल्दी बाबा से भी पहले निकल गए उस कार्य के लिए जिसके लिए बाबा भी उनका इतना वर्णन कर रहा है। तो अभी ये देखना हमारा लक्ष्य किस किस चीजों में है, कोई खाने में पीने में या कोई और, चलो और नहीं तो सेवा में ही कोई चीज हो। क्योंकि यहां तो बाबा ने उसी में आगे बोला है कि जो नंबर मिलते हैं वो सच्ची दिल के आधार से मिलते हैं, सेवा के आधार से नहीं मिलते हैं। सेवा में भी किस भाव से सेवा की गई है उस आधार से नंबर मिलते हैं। तो आप सोचो हमारी कितनी तैयारी चल रही है कि हम कितना तैयार हैं कि हमें ऐसी सेवा की स्मृति है। तो जब लक्ष्य होगा तो जरूर हमारी स्थिति भी अंत की वैसी होगी। एक नहीं कई दादियां यज्ञ में ऐसी जो ऐसे गई कि जिनका देखने वाला था। ये जवाहर दादी का शायद किसी ने नाम सुना हो, दीदी से पहले इन्होंने आपने सुना है ना। तो क्या हुआ कि उस समय क्या होता था कि दादी आ रही हैं जा रही हैं, जिस दिन उनको जाना था दीदी ने हिस्ट्री हॉल में बुलाया और बोला अच्छा सबसे छुट्टी ले लो, और सामान पैक करके उनका बाहर पेटी में भाई खड़ा है, उसकी ड्यूटी थी उनको ले जाना, जो भी आएगा उनको सामान पहुंचाना फिर वापस छोड़ना। तो वो सामान लेके बाहर खड़ा है, दीदी दादी ने बोला अभी हम छुट्टी लेके आते हैं। वहां बैठी गद्दी पर, छुट्टी ली और दीदी पूछती थी सुनाओ यहां कुछ अनुभव वगैरह सुनाओ, तो सुना के गई। फिर वो भाई के पास गई, बोलते बस एक मिनट रुको मैं स्नान करके आती हूं। एक मिनट हो गया, दस मिनट हो गया, पंद्रह मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वो वहीं से वहीं बाबा के पास निकल ली। तो सोचो कितनी पावरफुल स्थिति होगी, कितना वो लक्ष्य होगा। और जब ऐसा कोई लक्ष्य होता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं लक्षण भी वैसे आने लगते हैं। कुछ आपको लाने पड़ते हैं और कुछ आपके लक्ष्य के अनुसार स्वतः आने लगते हैं। तो आप सोचिए कि उस सेवा के लिए जो हमारा विचार, जो हमारा चिंतन था कि ऐसी सेवा के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, तो ही हम वो जो एडवांस पार्टी वाले अंतिम सवे, हाँ चली गई वहीं से सीधे बाहर निकल के नहीं आई। वो तो भाई था तो अंदर तो नहीं जा सकता था कमरे में, वेट करते फिर बाद में भेजा गया। तो माना दो चीजें चाहिए। जैसे आप देखो मधुबन में भी कोई सेवा के लिए आता है तो क्या कहते हैं, फ्री हो घर से, सेंटर की छुट्टी है तो ही इस सेवा को कर सकते हो, बाकी सहयोग रीति से अलग बात है। क्योंकि बाबा ने वहां पे बोला ये आत्माएं तमोगुणी वातावरण होगा, प्रकृति का भी प्रभाव होगा, ऐसे समय पे ये आत्मा सतोगुणी है और कमल फूल के समान है। क्योंकि लास्ट समय अगर आपका कोई हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो वो हिसाब किताब आपको अपनी तरफ खींच लेगा। फिर आप ये सेवा, जैसे होता है ना कई बार यहां कोई सेवा के लिए आते हैं फिर अचानक से उनका फोन आ जाता है, ये समस्या वो समस्या, चले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर अंत तक में आपका कोई हिसाब किताब रह जाएगा तो वो हिसाब किताब आपको अपनी तरफ खींच लेगा। या अगर आपका कोई भी स्वभाव संस्कार विकारी होगा तो वो भी आपको अपनी तरफ खींच लेगा। इसके लिए दो चीजों से मुक्ति चाहिए, एक विकार लेस और एक हिसाब किताब लेस। अगर इन चीजों से मुक्त होंगे तो ऐसी सेवा में हीरो पार्ट का प्ले कर सकेंगे। फिर आगे इसमें बाबा ने दीदी को भी बोला कि दीदी का पार्ट ऐसा था कि जो अपना नष्टो मोहा होकर के ऐसी सेवा के लिए पहुंच गई। बाकी फिर भाव का भी वर्णन आया है। फिर इसमें बाबा ने बोला कि अब आप विचार करना है ऐसी सेवा में क्या करना है, कहां तक तैयार है। तो ये एडवांस पार्टी से लगभग इसमें बहुत बात हुई, और भी कई सारी बातें हैं जो इतना तो वर्णन नहीं हो सकता। फिर लास्ट में दादियों से बात करी और दादियों से पूछा है कि परम धाम का गेट कौन खोलेगा। जो स्थापना के आदि में निमित्त बने हैं वही अंत में भी निमित्त बनेंगे। तो बाबा ने बोला जिसने शुरुआत जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो जैसे आदि में भी स्थापना के निमित्त बने ऐसे अंत में भी निमित्त बने। तो बाबा ने ये भी बोला कि दादियों को कि अब घर साथ में चलना है, मतलब सजनी बन के चलना है या फिर साथी बन के चलना है। साथी भी बन के चलेंगे तो भी पीछे चलेंगे, सजनी बन के चलेंगे तो साथ में चलेंगे। फिर बाबा ने इसमें बहुत एक अभ्यास कह लो या यू कह लो उस पर सबको काम करना है, बहुत अच्छा अभ्यास इसमें बाबा ने बोला है कि आपको क्या करना, अशरीरीपन का अभ्यास करना, जिसमें ये अंत समय में क्या होगा आपकी जो आत्मा है ये एक अंतवाहक शरीर बन जाएगा, जो आत्मा एक ऐसा वाहन बन जाएगी जो कहीं भी बैठे हुए आप सेवा कर सकोगे, कहीं भी किसी को कुछ भी प्राप्ति का अनुभव करा सकोगे। फिर मिसाल दिया जैसे ब्रह्मा बाप, जैसे ब्रह्मा बाप ने अंतिम समय क्या किया, अंतिम समय की स्टेज बाबा ने बोला सबने देखी ना कैसी थी, आप सब खुद अनुभव कर चुके हो, आपने देखा कि आप जाते थे कोई बात बताते थे बात मिस भी नहीं करते थे और सेकंड में होके आ भी जाते थे, एक ही मिनट में दो काम हो जाते थे, कोई की बात मिस भी नहीं करते थे, आप सोचते थे कि बाबा यहां है या नहीं है। तो आप सोचो ये स्थिति कैसे बनी होगी, बहुत लंबा वो अशरीरीपन का अभ्यास जो बार 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 बाबा ने किया होगा। एक है कि हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम अपनी स्थिति से दूसरे को उस स्थिति में स्थित कर सके, और अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं होगी तो दूसरा हमें अपनी स्थिति में स्थित कर देगा। वो तो होता ही ना, कोई कुछ करता है तो हम अपनी स्थिति छोड़ के उसकी स्थिति में आ जाते हैं। तो कम से कम चलो वहां तक नहीं पहुंचते हैं, यहां तक तो पहुंच जाए कि हम हमारी स्थिति में स्थित हो जाएं, भले चाहे दूसरे की स्थिति में वो हमारी स्थिति में ना स्थित हो, फिर आगे बढ़े कि वो दूसरी आत्मा उस स्थिति में स्थित हो जाए जो हमारी स्थिति है। जैसे कई ये चंद्रमणि दादी बताती हैं कि बाबा के पास जाते थे कि ये है वो है, तो बाबा कहता था क्या ये सब बातें लेके आते, ये सब तुम बच्चों का काम है, बाप का नहीं काम है। तो दादी कहती थी पहले एक समय था कि बाबा इतनी बातें पूछता था और आज कहता है कि कोई वो नहीं है। यहां तक कि कई बार कुछ बहनें जाती थी बताती थी बाबा जैसे पैर रखते थे तो ऐसा लगता था बाबा के शरीर से जैसे लाइट ही लाइट निकल रही है, और वो लाइट देख के ऐसा लगता था कि हम क्या करना है क्या बाबा से पूछना है सब भूल जाते थे। एक एक घंटे तक बाबा के साथ बैठे रह जाते थे और आते बस छोटी सी बात पूछने के लिए है, और बाबा आएगा ऐसा लगेगा बाबा कहीं और देख रहा, आएगा पूछेगा क्या हुआ बच्ची कुछ काम, तो बोलेंगे नहीं, फिर बाबा उपस अपना जैसे कहीं और खोया है कुछ और देख रहा है। ये बाबा की अंतिम स्टेज थी, और लास्ट के लिए बाबा ने बोला इस स्थिति द्वारा जो है हम अपना अंत भी सुहावना कर सकेंगे और अपनी सेफ्टी भी कर सकेंगे। फिर बाकी आगे बाबा ने इसमें सिल्वर जुबली बहनों से जो हुई है उनसे बात करी, वहां पे बस एक बात बताएंगे कि जिसमें बाबा ने बोला कि बार बार कोई कार्य के लिए दृढ़ संकल्प मतलब करना चाहिए तो हो जाएगा। बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प तो करते हैं लेकिन वो शक्तिशाली नहीं होता, अगर दृढ़ संकल्प होता तो उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर ये तो आगे का था, इसमें यहां तक पूरी ये मुरली बाबा की थी। ठीक, ओम शांति।
चलेंगे निर्भय हो जग की। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मित्र बना देंगे, जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मित्र बना देंगे।